So we're looking at the relationship between art and the Dhamma.
तो हम यह देख रहे थे कि कला और धम्म का संबंध क्या है.
And there's a very, very close and important relationship between them.
और इनका बहुत ही गहरा और नजदीकी संबंध है.
The greatest periods of Indian art and culture are those where Buddhism was dominant.
सबसे उच्च कला का उच्चांक भारत के इतिहास में अगर रहा तो जब बौद्ध धर्म सबसे प्रभावी था उस वक्त रहा.
Under the Mauryas and other Kushanas, the Guptas, the great periods of Indian art flourished.
तो भारतीय कला और संस्कृति बहुत ज्यादा तरीके से पनपी जब मौर्य लोग और कुशान लोग राजा थे.
And we hope that as Buddhism revives in India, it will have an effect now.
और हम आशा करते हैं कि जैसे बौद्ध धर्म भारत में अभी फिर से पुनर्जीवित होगा, कलाएं बदलेगी.
Art doesn't just express Buddhist principles.
कला जो है वह केवल बौद्ध तत्व बताते हैं, ऐसा नहीं है.
Art is itself a method of development.
कला अपने आप में एक यानी क्या कहते कि प्रगति की पद्धति है.
If you really engage in art in an active way, it follows the same path as the path of the Dhamma.
अगर आप कला को सक्रिय तरीके से अगर अपनाते हैं तो वो वैसे ही बढ़ती है जैसे धम्म बढ़ता है.
So we're going to explore this in some detail.
तो उसको हम थोड़ा सा अभी अधिक गहराई में देखेंगे.
At least at a preliminary level.
कम से कम एक प्राथमिक लेवल पर स्तर पर.
Of course we'll explore it by practicing meditation.
अब हम इसको उजागर करेंगे ध्यान के अभ्यास से.
We'll explore it by sharing our experience of art.
और हमारा जो कला का जो अनुभव है उसके साथ.
We'll even explore it if we can by doing some art together.
और हम वह भी कर सकते हैं साथ में कुछ कला करके.
But let's see what we can manage.
अब देखेंगे जो होगा उस तरीके से हम करेंगे इसे.
What I want to do this morning is introduce a broad theme that connects the Dhamma with art.
तो हम क्या करेंगे कि धम्म की जो मुख्य विषय है उसको कला के साथ कैसा हम जोड़ेंगे इसके बारे में हम देखेंगे.
So I want to do it through a metaphor.
अब मैं उसे एक उदाहरण के स्वरूप में अलंकारिक तरीके से हम मैं इसे बताना चाहूंगा.
It's a metaphor that the Buddha himself used very often.
यह एक ऐसा अलंकार है जो स्वयं बुद्ध ने इस्तेमाल किया है.
It's the metaphor of refining gold.
यह एक ऐसा अलंकारिक उदाहरण है जो सोने को परिशुद्ध करता है.
You just imagine you have a beautiful golden Buddha murti.
अब आप इसकी कल्पना कीजिए कि एक बहुत सुंदर सोनेरी बुद्ध की मूर्ति है.
Which is both beautiful because of the metal and beautiful because of its form.
तो यह सुंदर है सबसे पहले उस धातु के कारण और उसके आकार के कारण.
Where did that golden Buddha come from?
अब कहां से यह सोनेरी बुद्ध आए हैं?
Of course, it came from the mind and the hands of the artist.
तो यह मन से और कलाकार के हाथों से आया हुआ है.
But it came also from the gold.
लेकिन यह गोल्ड से या उस सोने से भी आया, उस धातु से भी आया है.
But where did the gold come from?
अब सोना कहाँ से आया?
It came from the ground.
अब वो सोना जमीन से आया है, खान से आया है.
You find gold in gold ore.
और वो गोल्ड जो है, वो सोना जो है, हमें वो खनिज के रूप में मिलता है.
It's inside the rocks, as it were.
यह पत्थरों में छुपा हुआ होता है.
And you have to crush the rocks, you have to melt the rocks.
अब उस पत्थर को हमें तोड़ना होता है, उसे पिघलाना होता है.
You have to melt the gold so that all the impurities go off.
अब वो जो सोना है उसको भी हमें पिघलाना होता है ताकि उसकी जो अशुद्धता है वह निकल जाती है.
So you get a process.
तो उसकी एक प्रक्रिया है.
you've got the raw material.
तो हमारे पास एक कच्चा माल है.
You've got the raw what you call it the gold ore.
जिसे हम सोने का खनिज कहते हैं.
Then you have to process that.
अब वो जो खनिज है, सोने का जो खनिज है, जो कच्चा है, उसे हमें प्रक्रिया में डालना होता है.
And when you process it, you get pure gold from which you can make a beautiful Buddha murti.
तो अब उस प्रक्रिया से जाकर हमें एक शुद्ध सोना पाना होता है, जिससे हम वह सुंदर बुद्ध का रूप बनाते हैं.
Well, the Buddha used this as a metaphor for what has to happen to us.
तो बुद्ध ने यह एक अलंकारिक रूप से हमें बताया है कि हमारे साथ क्या होता है.
We are the gold.
अब हम सब लोग मान लीजिए एक सोना है.
We are at the moment gold ore.
अब इस क्षण पे हम जो खनिज के रूप में जो सोना मिलता है, कच्चा सोना, वैसे हम सोना है.
There needs to be a process of refinement.
अब वहाँ पे हमें एक प्रक्रिया लगानी होती है उसको शुद्ध करने के लिए.
From that process of refinement, we can be like the Buddha.
और उस प्रक्रिया के माध्यम से हम बुद्ध के जैसे हो सकते हैं.
This process of refinement is, of course, what the practice of the Buddha Dhamma is about.
और यह जो प्रक्रिया है शुद्धता की, यही एक धम्म है.
The practice of the Dhamma.
धम्म का आचरण है.
And it's what art is about at its best.
और यही कला का जो उच्चांक जो होता है, वही एक कला के माध्यम से हम बताते हैं.
If you're really engaging with art in a deep way, it's changing you.
अगर आप कला को गहराई से व्यस्तता में जाते हैं कला के साथ, तो यह आपको बदलती है.
And you're helping to change others.
और आप औरों को बदलने के लिए मदद करते हैं.
Because you're communicating more refined human values.
क्योंकि आप बहुत ही जो शुद्ध मूल्य है, उन मूल्यों को आप संवादित करने की कोशिश करते हैं.
We're going to explore this metaphor over these 3 days.
और यह जो अलंकारिक जो भाषा है, या जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ, उसको हम आने वाले 2 दिन में देखेंगे.
First of all, today we're going to look at the gold ore.
आज हम जो खनिज के रूप में जो कच्चा हमें सोना मिलता है, उसे हम देखेंगे.
Tomorrow we'll look at the process of refinement.
कल हम देखेंगे कि जो शुद्धता की जो प्रक्रिया है, उसका अर्थ क्या है.
And the day after that we'll look at what that leads to.
और परसों हम देखेंगे कि वह हमें कहाँ ले जाता है.
We're going to look at the refined product, you could say.
हम ऐसा देखेंगे कि जो शुद्ध जो हमें माल मिलता है, उसका अर्थ क्या है.
The refined creation.
जो जिसे हम सृजकता कहते हैं.
And we'll look at it both from the point of view of traditional Buddhism and from the point of view of art.
तो हम पारंपरिक बौद्ध तरीके से और कला के माध्यम से उसका संबंध क्या है, उसको हम देखेंगे.
And I hope that from that we'll have something to talk about and maybe even something to practice.
तो हम उससे देखते हैं कि हम उसके से बारे में क्या बात कर सकते हैं, और हम उसका आचरण कैसे कर सकते हैं.
So today we're focusing on the raw material.
तो आज हम जो खनिज है, या जो कच्चा जो पदार्थ है, उसके बारे में बात करेंगे.
I don't know what media you all work in.
अब मुझे पता नहीं कि आप किस माध्यम में आप कलाएं करते हैं, या आप क्या करते हैं.
If you're sculptors, then you work maybe with clay or with stone.
अगर आप मूर्तिकार है, तो आप पत्थर को या फिर वो मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं.
If you're painters, you work with canvas, you work with gouache or oils or watercolors, whatever.
अगर आप चित्रकार है, तो आप पेंट से, कैनवास से आप उसका इस्तेमाल करते हैं.
If you're a poet, you work with a pen or nowadays a computer.
तो अगर आप कवि है, तो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, पेन या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं.
If you're a musician, you work with the notes in your harmonium or your tabla.
अगर आप संगीतकार है, तो आप उस सुरों के माध्यम से आप उसको अभिव्यक्त करते हैं.
But really, what is the material?
लेकिन सही मायने में हम देखते हैं कि मटेरियल का मतलब वो माल क्या है, कि किससे हम इस्तेमाल करते हैं, सामग्री क्या है.
What is the raw material that we really need to work with?
ऐसी कौन सी कच्ची सामग्री है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इसको निर्माण करने में.
It's our minds.
और महत्वपूर्ण यह है कि हमारा वह मन है.
Art comes from the mind.
कला जो है वह मन से उत्पन्न होती है.
This is a very basic point in Buddhism.
यह बहुत ही मूलभूत मुद्दा है बौद्ध धर्म में.
It's a very important point that Baba Sahib makes time and again in the Buddha and his Dhamma.
यही मुद्दा बाबा साहब बार बार बुद्ध एंड इस धम्म में बताते हैं.
Whatever we do comes out of our minds.
जो कुछ भी हम करते हैं वह हमारे मन से उत्पन्न होता है.
And the quality of what we do is determined by the quality of our minds.
और जो भी हम उसकी यानी क्वालिटी का मतलब उसका जो दर्जा है उस दर्जा उस दर्जे का होता है जिस दर्जे का हमारा मन हो.
A bad mind does bad acts.
बुरा जो मन है वह बुरी ही कृति करेगा.
A good mind does good acts.
और अच्छा मन जो है वह अच्छी कृति करेगा.
An ugly mind produces ugly environment.
जो कुरूप मन है वह कुरूप वातावरण निर्माण करेगा.
A beautiful mind produces beauty.
और जो सुंदर मन है वह सुंदर वातावरण निर्माण करेगा.
A mind that is meaningful produces meaningful art.
जो एक अर्थपूर्ण जो मन है वह अर्थपूर्ण कलाओं को जन्म देगा.
It's quite straightforward.
यह बिल्कुल सीधा है.
What comes out is what's in there.
जो बाहर आता है जो आपके अंदर है उससे वह बाहर आता है.
And of course in working at art you are changing what's in there.
और जब आप कला के साथ इसका कार्य करते हैं तो जो आपके अंदर है उसको आप बदलते रहते हैं.
Those that you of you who do work creatively in any way will know this process.
जो कुछ भी सृजकता से यह काम करते हैं इस प्रक्रिया को वे जानते हैं.
The medium that's most familiar to me is with words.
और मेरे लिए सबसे करीबी जो माध्यम है वह शब्द है.
I write some poetry.
मैं कुछ कविताएं लिखता हूँ.
I do some writing on Buddhist themes.
और बौद्ध विषय पे मैं कुछ लिखता हूँ.
I speak.
मैं बोलता हूँ.
And when you're doing those things, sometimes you know this isn't right.
और जब हम लिखते हैं या करते हैं तो हम जानते हैं कि यह कुछ ठीक नहीं है.
You know that you've not put the right words together to express what you want to say.
बहुत बार आप उचित शब्दों को नहीं रखते हैं जो आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं.
And often you don't even know quite why they're the wrong words.
और बहुत बार आप यह भी नहीं जानते कि क्यों यह गलत शब्द है.
And you have to work within yourself to get the right words.
और आपके अंदर आपको कार्य करना होता है एक उचित शब्द लाने के लिए.
Or to let the right words come out.
और ताकि जो सही जो शब्द है वह सही शब्द आपके बाहर आए.
Because often what happens is that you get in the way.
अक्सर क्या होता है हम स्वयं ही उस मार्ग के आड़े आते हैं.
You're trying to write a poem.
जैसे आप किसी कविता को लिखने की कोशिश करते हैं.
You start to have ideas about how other people will hear that poem.
आप उसकी कल्पना करते हैं कि अगर अन्य लोग इस कविता को सुनेंगे तो वो कैसा महसूस करेंगे.
You start to think, oh, they will really think I'm great.
आप ऐसा सोचने लगते हैं कि जब यह वो कविता पढ़ेंगे तो मैं कितना महान हूँ ऐसा वो सोचेंगे.
What a wonderful poem I'm making.
कितनी सुंदर कविता मैंने बनाई.
And rubbish comes out.
और कुछ तो भी घटिया कविता बाहर आती है.
It's the same with painting, I'm sure.
यही पेंटिंग के साथ होता है.
I'm sure it's the same as sculpting.
यही मूर्तिकार के साथ होता है.
With music,
संगीत की कोई रचना हम करते हैं तब भी वैसे ही होता
है. When your pride gets in the way, when your greed gets in the way, the work doesn't work.
जब आपका अहंकार आड़े आ जाता है तो फिर वह कलाएं वहां उत्पन्न नहीं होती.
And you can see it in the work that's around.
और जो कुछ भी यानी आप कार्य करते हैं वो आप उसे इर्द-गिर्द देख सकते हैं.
You go to many art galleries and what you see is really rubbish.
बहुत सारे आर्ट गैलरी में आप जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कुछ नहीं होता.
It's expression of a crude mind.
यह कच्चे मन का अभिव्यक्ति है.
A superficial mind.
बहुत ही ऊपरे तौर पे जो मन है उसकी अभिव्यक्ति है.
You listen to a lot of music.
अब बहुत सारे संगीत को आप सुनते
हैं. Some of it's pretty. Sort of quite nice.
हाँ, बहुत सारा संगीत जो होता है वो थोड़ा बहुत अच्छा होता है.
But no real depth to it.
लेकिन उसमें गहराई नहीं होती.
In any other medium.
वैसा ही अन्य कलाओं के माध्यम से होता है.
You hear a poem and it's just lines of words.
बहुत बार आप कविता देखते हो केवल शब्दों की रचना दिखती है.
Because the mind behind it has no depth.
क्योंकि जिस मन से उस कला की निर्मिति हुई है वह गहरा मन नहीं था.
And to create art, you need to work to go deeper, to be more true, more honest.
और अच्छी कलाओं का निर्माण करने के लिए आपको अधिक गहरा जाना होता है, अधिक अंदर जाना होता है.
And that is exactly what we're doing in the Buddha Dhamma.
और वही हम बुद्ध धम्म में करते हैं.
We're trying to work to discover, to create, to change. Our minds so that they're more honest, more true, more skillful.
तो हम इस तरीके से ऐसे मन को खोजने की कोशिश करते हैं जो अधिक प्रामाणिक हो, सत्यता के ऊपर वह आधारित हो और गहरा हो.
So what is the mind out of which bad art comes?
तो कौन सा मन है जिससे बुरी कलाएं उत्पन्न होती है?
What is the mind out of which bad actions come?
ऐसा कौन सा मन है जहाँ से अकुशल कर्म आते हैं?
That's what we were going to examine today.
तो वही हम आज उसका परीक्षण करेंगे.
This is the raw material.
अब यह कच्चा सामान है या सामग्री है.
To some extent, that's us.
अब कुछ हद तक हम सब लोग कच्चे हैं.
We are the raw material of art of the Dhamma.
अब ऐसा आप कह सकते हैं धम्म कला के हम सब लोग कच्ची सामग्री है.
Our minds are the raw material of art and of Dhamma.
और हमारा मन जो है वह धम्म कला की कच्ची सामग्री है.
So what are those minds like?
तो ऐसे जो मन है, ऐसे जो माइंड है वो कैसे होते हैं?
What are the minds like out of which bad art, bad action comes?
ऐसे कौन से मन है जिनसे बुरी कलाएं या बुरी जो कर्म है वह बाहर आते हैं?
Well, in the first place, you could say, taking the standard Buddhist point of view, they're minds that are dominated by three major factors.
तो जो मन है, जो बुरा मन होता है, वो तीन प्रमुख लक्षणों से प्रभावित होता है.
They're dominated by greed.
वो सबसे पहले लोभ से प्रभावित होते हैं.
By hatred.
वो द्वेष से प्रभावित होता है.
And by ignorance, और unawareness.
और वो अजागृति या अविद्या के कारण वह प्रभावित होता है.
So what do these mean?
अब इसका अर्थ क्या है?
Greed is a desire to own things or to identify with things that you think will make you secure.
तो
Greed is the desire to identify yourself with things or to possess things that you think will make you secure.
लोभ एक ऐसी बात है जिससे हम किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं और उस हासिलियत से हमें ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित हो जाएंगे.
So let's say you're doing a painting.
अब मान लीजिए आप एक पेंटिंग बना रहे हैं.
I've only painted when I was a child.
मैंने केवल
50 years ago.
50 साल पहले जब मैं बच्चा था तभी मैंने पेंटिंग की थी.
That's the last time I painted.
उसके बाद मैंने कभी पेंटिंग नहीं की.
But I can imagine what it means.
लेकिन मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ कि इसका अर्थ क्या है.
You're painting something.
अब आप कुछ तो भी पेंट कर रहे हैं.
Maybe you're painting from life.
मान लीजिए आप जीवन से कुछ पेंट कर रहे हैं.
You may be painting a tree.
मान लीजिए आप किसी पेड़ को बना रहे हैं.
At a certain point, you impose upon the tree your idea of a tree.
तो आप क्या करते हैं? आपके मन में जो पेड़ है, उसी पेड़ को आप बनाना चाहते हैं.
If you're really painting from life, you need to be painting what you see.
अगर आप अपने जीवन से पेड़ को बनाना चाहते हैं, तो आपके जीवन में क्या है उसे आपको पहले देखना होगा.
Not your idea. of what you see.
आपकी कल्पना नहीं जो आपने पेड़ के बारे में सोची है.
You need to look at the lines, you look at need to look at the colors, you need to look at the shades, and just let them come onto the page.
तो इस तरीके से उस कला को आप बनाने की कोशिश करते हैं, उस लाइंस को या उन रेखाओं को आप वैसे ही देखते हैं जैसे आपने अपने जीवन में कुछ अनुभव किया हो.
But really looking like that is very difficult.
लेकिन वैसा देखना अपने आप में एक बहुत कठिन बात है.
And so what we do is we impose upon it a sort of shortcut.
तो हम क्या करते हैं, हम अपने कल्पनाओं को उस पर लाद देते हैं एक तुरंत कोई चित्र बनाने के लिए.
You often see it when people who don't know about painting or drawing, when they draw something.
आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग पेंटिंग करते हैं या कुछ बनाते हैं.
They don't really draw a tree.
वो सही मायने में पेड़ नहीं बनाते.
They just draw some shapes that sort of conventionally represent a tree.
ऐसा कोई आकार वह बनाते हैं जो अब हमें पेड़ के जैसा दिखता है.
In other words, they've grabbed that painting.
एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्होंने वो पेंटिंग को जैसे पकड़ लिया हो.
That is craving.
वह लोभ है.
Instead of being open to the experience of the tree and allowing it to come out on the page, you grab at it.
उस पेड़ को अनुभव करके हम अपने अंदर लेकर अभिव्यक्त करने के बजाय हमारी जो कल्पना है पेड़ की उसको हम लाते हैं.
And the business of painting is remaining open to what you see.
और पेंटिंग का जो सही मायने में जो अर्थ है वह अपने आप को खुला करना है.
But your mind seizes upon it and kills it.
लेकिन आपका जो मन है वह उसको रोकता है और उस जो सृजकता है उसकी काल्पनिक जो काल्पनिकता जो है उसको वह रोकता है.
It's the same with poetry.
यही कविता के साथ है.
You're struggling to express something.
आप संघर्ष करते हैं कुछ तो भी अभिव्यक्त करने के लिए.
And of course what you're trying to express is really beyond expression.
और जो भी आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं वह आपके अभिव्यक्ति के परे है.
Any words that you use can't really capture what you're trying to say.
जो भी शब्द आप इस्तेमाल करते हैं वो सही मायने में उसको पकड़ नहीं पाता.
But you try to find an image or a form of words that will express that.
तो ऐसे आप किसी शब्द को या आकृति को पकड़ने की आप कोशिश करते हैं जो वह उस चीज को अभिव्यक्त करेगी.
And that's difficult.
और यह कठिन है.
It's a struggle.
क्योंकि वह संघर्ष है.
So what you do is you make a shortcut.
तो क्या करते हैं, आप एक छोटा रास्ता या शॉर्टकट अपनाते हैं.
And you just put some words together that sort of conventionally represent whatever it is you're trying to say.
तो आप क्या करते हैं कि उन शब्दों को इकट्ठा रखने की कोशिश करते हैं और पारंपरिक तरीके से या औपचारिक तरीके से आप उसे बताने की कोशिश करते हैं.
So that you've made a poem.
आपने कविता की रचना की.
But it doesn't really, it's not really a poem.
लेकिन वास्तविक रूप से वह काव्य नहीं होता है.
It's just a bundle of words.
क्योंकि वहाँ केवल शब्दों का जंजाल होता है.
You haven't really expressed something genuine and real.
एक जो सही मायने में गहरा है और सही है उसने उसको आपने अभिव्यक्त नहीं किया.
So in art, craving is this reaching too soon for a solution.
तो कला में लोभ ऐसा कार्य करता है कि किसी चीज को आप फटाक से तुरंत पकड़ना चाहते हैं.
So that before you really struggled within yourself to express what you're trying to say or to express what you feel, you come to a premature conclusion.
अगर आप जो कहना चाह रहे उसके बारे में आप अगर संघर्ष नहीं करते हैं, उसको सोचते नहीं है, तो आप अपरिपक्व कलाओं को पकड़ लेते हैं.
What's expressed in your art is you.
कला में जो अभिव्यक्त होता है वो आप स्वयं होते हैं.
It's what you're expressing is your own weakness, your own craving, your own hatred.
अगर आप हम उससे संघर्ष नहीं करते हैं तो हम हमारी कमजोरी को कला में अभिव्यक्त करेंगे.
So we grab at a solution too soon.
तो हम जो उसका जो यानी सुलझना जो है वो उसको बहुत तुरंत पकड़ने की कोशिश करते हैं.
The same with hatred.
यही हेट्रेट के साथ है, द्वेष के साथ है.
Sometimes our art expresses our underlying hatred.
कला जो है कभी कभी अपने मन में जो सूक्ष्म द्वेष होता है उसको अभिव्यक्त करती है.
And in that way it cannot really be art.
और उस दृष्टिकोण से वह सही कला नहीं हो सकती.
In the ordinary field it's easier to understand.
अब सामान्य सर्वसामान्य क्षेत्र में हम इसे समझ सकते हैं.
If we just pile up material goods, it's just craving.
अब हम चीजों को बस इकट्ठा ही करने में अगर जुटे हुए हैं, तो वह लोभ है.
We're just trying to make ourselves feel good by having lots of things.
हम बहुत ऐसी अच्छी चीजें का या चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें अच्छा लगता है.
If we feel that we're threatened by others, we act towards them with hatred.
अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई धमकी दे रहा है, तो हम उसका द्वेष करते हैं.
We try to get rid of them, even destroy them.
हम उनसे दूर होना चाहते हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं.
So these are fundamental attitudes to life that come out in our art.
तो यह कुछ मूलभूत आदतें हैं जो कला में कार्य करती है.
In art, you can transform those feelings.
अब एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन भावनाओं को आप परिवर्तित कर सकते हैं.
But you cannot simply leave them raw. You cannot leave them untransformed.
लेकिन अगर वह परिवर्तित नहीं हुए, तो आप उनको कच्ची भावनाएं करके छोड़ नहीं सकते.
So we work in Buddhism and in art to transform these basic attitudes of craving and hatred.
तो हम कला में इस तरीके से एक मूलभूत क्या कह सकते हैं कि लोभ को हम अभिव्यक्त करते हैं.
And hatred, द्वेष.
और द्वेष को.
We take these basic attitudes and we change them into something else.
तो हम यह जो मूलभूत हमारे आदतें हैं उनको बदलते हैं और उनको परिवर्तित करते हैं.
In addition to them, there's the root poison, the root disease of ignorance.
तो इसके सतह में अगर हम देखते हैं, तो उसका मूल कारण जो है वह अविद्या है.
In Buddhism, this is the central issue.
और बौद्ध धर्म में यही एक सार के रूप में मुद्दा है.
We don't understand life as it really is.
हम जीवन को जैसा है वैसा समझते नहीं है.
We don't see things clearly.
हम चीजों को स्पष्ट रूप से देखते नहीं है.
We think that things are fixed and permanent.
हम सोचते हैं कि चीजें जो है वह नित्य है, हमेशा के लिए है.
We think that we ourselves are permanent.
हम अपने आप के बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं भी निरंतर रहने वाला हूँ.
We think that we have a fixed identity.
हम सोचते हैं कि एक हमारी पक्की पहचान है.
And we act on the basis of that identity very strongly.
और उसी पहचान के ऊपर हम अपना कार्य करते हैं.
For instance, we identify with something like caste.
उदाहरण के लिए हम अपने आप की पहचान मान लीजिए जैसी जाति है, जाति के साथ करते हैं.
We think that's who we are.
हम ऐसा सोचते हैं कि हम ही वही जाति है.
We act on the basis of that identity.
और हम उसी पहचान के ऊपर अपना कार्य करते हैं.
We think that that's something eternal about us.
और हम ऐसा सोचते हैं कि जाति ऐसी कोई हमारे अंदर ऐसी है जो अमर है.
There are other identities that we can get, make fixed in that same way.
और हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसे अन्य कुछ पहचान है जिससे हम अपने आप को बंद कर देते हैं.
Nationality.
राष्ट्रीयता.
Indian, English.
भारतीय है या इंग्लिश है.
So I could identify with my Englishness so strongly that I wouldn't be able to talk to you.
तो मैं अपने आप को ऐसा इंग्लिश आदमी कह सकता हूँ कि आपके साथ मेरी शायद कोई बात ही नहीं हो सकती.
That's what my ancestors did when they were here.
तो वही मेरे पूर्वजों ने किया जब वे वहाँ थे, यहाँ थे.
They thought they were superior to Indians.
वो ऐसा सोचते थे कि वो भारतीय लोगों से सुपीरियर है या ऊंचे.
They identified with their Englishness to a point that it made a division between human beings.
उन्होंने अपने आप को इतना उच्च स्तर पे अपनी पहचान की कि उन्होंने इंसानों को इंसान के रूप से जोड़ने से बंद कर दिया या विभाजित किया.
So that this identification with a fixed ego very very deep in us.
तो वह जो हमारा अहंकार है अपने अंदर जो पक्का है वह बहुत गहरा है.
All sorts of identities that we carry in us.
तो इस तरीके से भिन्न भिन्न पहचान हम अपने अंदर बनाते हैं.
Man, woman.
पुरुष और स्त्री.
We identify very strongly with our gender.
और हमारा यानी जो लिंग भेद है उसके साथ हमारी हम एक पक्की पहचान करते हैं.
Of course, it's a fact.
अब यह एक तथ्य है.
But we build on that fact all sorts of social expectations and realities.
लेकिन उन तथ्यों के ऊपर ही हमने सारे अपने सामाजिक सत्यताओं को और अपेक्षाओं को हमने रख दिया है.
Women are like this, men are like that.
स्त्रियां ऐसी होती है, पुरुष ऐसे होते हैं.
Men are up there, women are down there.
पुरुष ऊपर है, स्त्री नीचे है.
Sometimes the other way around too.
कभी कभी स्त्री अपने आप को उच्च समझती है, पुरुष अपने आप को नीचे समझता है.
You most easily see this when you meet other people.
यह हम बहुत आसानी से करते हैं जब हम अन्य लोगों को देखते हैं.
When you see them, you try to find an identity to fit them into.
तो जब हम यह देखते हैं तो हम अपने आप के पहचान को मजबूत या पक्की बनाने की कोशिश करते हैं.
You carry a card index.
अब जो कार्ड इंडेक्स यानी एक परिमाण, एक मापन आप अपने आप का लगाते हैं.
You want to know which file to put them into.
एक मापन आप अपने आप का अपने लिए बना लेते हैं.
Okay, Indian person, this file.
तो जैसा मान लीजिए अब ये भारतीय है तो यह इस बक्से में जाएगा.
Man, woman.
स्त्री है तो यहाँ जाएगी, पुरुष है तो यहाँ जाएगा.
This caste, that caste.
यह जाति, वह जाति.
Educated, uneducated.
शिक्षित, अशिक्षित.
Maharashtrian, not Maharashtrian.
यह महाराष्ट्रीयन है या नॉन महाराष्ट्रीयन.
From Vidarbha, not from Vidarbha.
यह विदर्भ से है या विदर्भ से नहीं है.
And so on. You fit people into boxes. We fit people into boxes.
तो इस तरीके से हम लोगों को एक बक्से में बंद करते हैं.
It happens immediately you come into interaction with people.
यह तुरंत होता है जब हम लोगों के साथ संवाद में आते हैं.
But of course we're doing it to ourselves as well.
लेकिन यही बात हम अपने साथ भी करते हैं.
We think of ourselves inside various identities.
हम अपने अंदर के अलग अलग पहचान के साथ हम अपने आप को यानी नित्य कर देते हैं.
And we fix those identities.
और हमने उन पहचान को, उस आइडेंटिटी को हमने नित्य कर दिया.
We can't operate outside those identities.
और उस पहचान के बाहर हम कोई संबंध नहीं रख पाते.
You know, I'm English, I can't eat murchi.
अब मैं इंग्लिश आदमी हूँ, मैं मिर्ची नहीं खा सकता.
I can't sit on the ground, huh?
अब मैं जमीन पे नहीं बैठ सकता.
etcetera, etcetera, huh?
वगैरह वगैरह ऐसी पहचान.
We start with that fixed identity and we approach the world through that identity.
तो हमने अपने आप की ऐसी कोई फिक्स पहचान की है और फिर वहां से हम अपने दुनिया को जोड़ते हैं.
दिस इज द एसेंस ऑफ द रॉ माइंड.
यही जो कच्चा मन है उसका सार है.
A raw mind is a mind that is fixed around a particular identity.
तो कच्चा मन वह है जो एक अपने पक्के पहचान के साथ ही चलता है.
And that identity limits us.
और वह जो पक्की पहचान है वह अपने को संकुचित करती है.
And from that identity you can only produce art that is the expression of that identity.
तो ऐसे संकुचित मन से संकुचित कला निर्माण होगी जो आपको ही संकुचित कला में बांध देगी.
So that your art expresses your nationality.
तो मान लीजिए आपकी कला जो है वो आपके राष्ट्रीयत्व को बताती है.
You know, if you're British, your paintings are all got red, white and blue in them.
तो अगर आप ब्रिटिश है तो आपकी जो पेंटिंग होगी उसमें रेड यानी लाल, नीला और सफेद कलर होगा.
If you're Indian, your paintings have all got green, white and orange. Saffron.
तो अगर आप भारतीय है तो आप हरा, सफेद और वो संतरा कलर है वो आप करेंगे.
I don't mean literally, but in effect they have.
अब यही साहित्यिक या शाब्दिक रूप से नहीं होता लेकिन वैसा ही हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं.
If you're from a particular caste, your painting expresses that caste identity.
अब आप किसी विशिष्ट जाति से है तो जाति की पहचान आपके पेंटिंग में, आपके कलाओं में दिखती है.
So that your identity begins to limit your art.
तो आपकी जो पहचान है वह आपके कलाओं को मानो उसने संकुचित कर दिया है.
The greatest of art transcends identity.
तो जो महान कलाएं है वह आपके पहचान को परिवर्तित करती है.
I'm English, so of course I must mention Shakespeare.
तो अब मैं अंग्रेजी आदमी हूँ तो मैं शेक्सपियर के बारे में सोचता हूँ.
But Shakespeare went way beyond being English.
लेकिन शेक्सपियर की जो कला है वह इंग्लिश होने से परे है.
The greatest of Shakespeare's plays say something about humanity itself.
तो जो शेक्सपियर के जो महान नाटक है वह इंसानियत की बातें करते हैं.
You probably all know Hamlet.
शायद आप सब लोगों को हैमलेट के बारे में पता होगा.
I believe this is the most widely translated piece of literature in the whole world.
पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा भाषांतरित हुआ हुआ यह एक कला का पीस है, यानी अंग है.
I know there are three or four very good translations into Marathi and many many in Hindi.
ऐसे तीन चार मराठी में भी ट्रांसलेशन मैंने देखे और बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशन हिंदी में हैं.
So why?
क्यों?
Why has this play that was written in 17th century Britain, England, why is it being translated into Marathi and Hindi?
तो जो 17वीं शताब्दी के पुराने इंग्लिश शैली में जो नाटक लिखा गया था वो आज के भाषाओं में हिंदी या मराठी में क्यों भाषांतरित होता है?
Because in the creation of this figure of Hamlet, Shakespeare has said something about every one of us.
क्योंकि एक छोटे से कला के हिस्से में शेक्सपियर हर इंसान की बात करने की कोशिश कर रहा है.
Hamlet is everybody.
हर व्यक्ति हैमलेट है.
In every one of us, something of what Shakespeare said about Hamlet can be found.
अब हैमलेट के बारे में शेक्सपियर ने उस नाटक में जो कहा है उसमें का कुछ ना कुछ अंश हम में से हर किसी में है.
The great difficulty of doing the right thing in a situation of extreme stress.
तो बहुत ही तनावपूर्वक जब हम होते हैं तब व्यक्ति क्या करता है उसके बारे में शेक्सपियर कह रहा है.
How does Hamlet deal with the difficulty of his father having been killed by his uncle who then married his mother?
तो हैमलेट एक ऐसे विचित्र त्रासदी को या तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा है, बता रहा है, जिसके पिता को उसके चाचा ने मारा और उसके चाचा ने उसके माँ के साथ शादी की.
In writing the play, Shakespeare gets right down into a dilemma that is universal.
तो उस नाटक के सतह में जब शेक्सपियर उस द्विधा मनोस्था की बात करता है जो हम सब में होती है.
So Shakespeare doesn't just belong to 16th century London, 17th century London.
तो शेक्सपियर जो है वो 17वीं शताब्दी के लंदन से ही है, ऐसा नहीं है.
Shakespeare isn't an Englishman.
और शेक्सपियर उस तरीके से इंग्लिशमैन नहीं है.
Shakespeare isn't even a man.
और वो एक दृष्टिकोण से पुरुष भी नहीं है.
He belongs to humanity.
वह एक इंसानियत के साथ उसका नाता है.
And so he's translated into every language in the world.
इसलिए हर भाषा में उसका भाषांतर हुआ है.
And there are other great artists from many different cultures who transcend their particular conditioning.
और ऐसे बहुत महान कलाकार हैं जिन्होंने अपने परिस्थितियों से उस कलाओं को उन्होंने जन्म दिया है.
But if we're stuck in our identity, that limits our aesthetic or artistic expression.
लेकिन अगर हम अपने संकुचित पहचान में अगर बन गए तो हमारे सौंदर्य शास्त्रीय जो अनुभव है या जो कला है उसके संकुचित ढांचे में हम बन जाएंगे.
In other fields, it limits us, it may even distort us.
यह हमें संकुचित कर सकता है, यह हमें खत्म भी कर सकता है.
If you're stuck with a particular, for instance, a caste identity, then what you create will be based on that identity.
अगर आपने किसी जाति विशेष पहचान पे ही उस कला को देखा है तो वह आपको वहीं पे रोक देगा, वहीं पे आपको संकुचित करेगा.
And it will be mixed up with the bad ethics of that identity.
और आपको उसके जो बुरे नैतिकताएं है उस नैतिकताओं के साथ भी उसे जोड़ देगी.
It will express the distortions of that identity.
और उस पहचान को उससे वहां खत्म कर देगी.
And the same with your acts in the world, what you do.
और यही हमारे कृति के साथ जो हम दुनिया में करते हैं.
What you do will come out of your fixed identity.
जो कुछ भी आप करेंगे वह आपके पक्की पहचान से ही उसकी उपज होगी.
Even ultimately, the fact that you identify yourself as separate from others.
और यह जी भी बात कि आप अपने आप को औरों से भिन्न देखते हैं.
Even the fact that you identify yourself as supremely important.
आप अपने आप को भी औरों से अधिक उच्च या श्रेष्ठ समझते हैं.
Every one of us thinks that we are number one.
हर व्यक्ति अपने आप के बारे में मैं नंबर वन हूँ ऐसा सोचता है.
No, my number one.
Subhuti number one. ऐसे सोचते हैं.
That's just his way of being number one. Don't worry. We identify ourselves as special.
तो हम अपने आप को एक विशेष व्यक्ति के रूप में ही देखना चाहते हैं.
And then we act to preserve that special separateness.
और हम वो जो विशेषता है उसको अलग से संजोना चाहते हैं.
And that is what the Dhamma life is lived to change.
और धम्म जीवन हम उसको बदलने के लिए जीते हैं.
Ultimately, that's what art is lived to change.
और कला उसी के लिए की जाती है.
That's what we practice art to do.
और उसी के लिए हम कला करते हैं बताने के लिए.
The greatest of art transcends ego identity.
जो महान कलाएं है वह आपके अहंकार की जो पहचान है उसको बदलती है.
The Buddhist life transcends ego identity.
बौद्ध जीवन जो है वह अहंकार को नष्ट करता है.
They move in the same direction.
वह एक ही दिशा में जाते हैं.
And if they're in relationship to each other, it's a very powerful tool of personal transformation and therefore of social transformation.
और अगर हम इन दो साधनों को इकट्ठा जोड़ पाए तो वह आपके स्व परिवर्तन का सबसे अच्छा तरीका है. उसी से ही सामाजिक परिवर्तन आएगा.
If we can really change ourselves so that we go beyond our ego identity, what we produce will have an enormous impact on the world.
अगर हम इस संसाधनों से हम अपने आप को बदलते हैं और हम बदल पाए तो इसका बहुत गहरा प्रभाव दुनिया के ऊपर होगा.
What we do will have a big effect on the world.
जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका प्रभाव होगा विश्व के ऊपर.
We're here at the Dikshabhumi.
अब हम यहाँ दीक्षा भूमि पे हैं.
Where a huge revolution was launched.
अब इतनी महान क्रांति यहाँ पे हुई है.
And Dr. Babasaheb Ambedkar was well aware of where that revolution had to be based.
अब बाबा साहब इस बात को भली भांति जानते थे कि किस माध्यम से यह क्रांति आई है.
It had to be based in the human mind.
और यह मन में या हमारे मन में ही इसकी नींव है.
Just before his passing away, he said that the greatest thing the Buddha has taught the world is that the reform of the world can only come about by the reform of the mind of the human being.
अपने निर्वाण के पहले कुछ दिन ही उन्होंने कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव मन में बदलाव लाकर ही किया जा सकता है.
The only way we can change the world is by changing the mind of humanity.
अगर सबसे बड़ा परिवर्तन अगर हमें दुनिया में लाना है तो इस इंसानियत का मन बदलना होगा.
That's what he began there.
और यही शुरुआत उन्होंने यहाँ पे की.
And through our practice of Buddhism, through our practice of the Dhamma, we change our minds.
और हमारे धम्म अभ्यास के कारण और हमारे धम्म आचरण के कारण हम उस मन को बदलते हैं.
Through the practice of art, the deep practice of art, we change our minds.
और हमारे गहरे अभ्यास के कारण आचरण के कारण हम अपने मन को बदलते हैं.
And of course, in art, you're expressing something.
और कला में हम अभिव्यक्त करते हैं.
You're making art.
हम कला को बनाते हैं.
When people encounter your art, they encounter you.
जब वे अपने कला को देखते हैं या सुनते हैं तो वह आपको देखते हैं या आपको सुनते हैं.
They encounter your mind.
वह आपके मन को सामना करते हैं.
When they encounter your mind, the quality of that mind communicates to them.
तो जब आपके मन का वो सामना करते हैं तो आपके मन का जो स्तर है उस स्तर को वो देखते हैं.
If there is some quality, that will communicate.
वहाँ पे कोई अगर स्तर है, कोई दर्जा है तो वह उनको पता चलेगा.
Just yesterday I was looking at a poem by a famous English poet, Shelley.
तो मैं कल एक कविता को देख रहा था जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि है शेली, उन्होंने लिखी थी.
Some of you may know it. I think it's a standard work studied in English literature in Indian colleges.
तो भारत के बहुत सारे कॉलेजेस में, विद्यालयों में यह पढ़ाई जाती है.
The poem I was looking at is called The Cloud.
और उस कविता को शीर्षक है उसका द क्लाउड, मेघ.
Never mind, but in reading that poem, I realized that what I was trying to do was get in communication with Shelley.
तो मैं उस कविता को पढ़ते हुए मैं यह अनुभव कर रहा था कि मैं शेली के साथ व्यस्त हूँ, उस कवि के साथ.
He'd written some words.
उन्होंने कुछ शब्द लिखे.
I tried to read those words.
अब मैंने उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश की.
The words are full of images.
और वो शब्द जो है उनमें बहुत सारे images है.
I'm trying to see those images.
और मैं उन यानी आकृतियों को देखने की कोशिश कर रहा था.
I'm trying to see the effect of those or allow those images to affect me.
और मैंने अपने आप को खुला किया कि वो जो उनकी आकृतियां है वो मेरे ऊपर प्रभाव करे.
And actually they're very very inspiring, very very deep words.
और वो बहुत ही गहरे शब्द है.
And so that in allowing Shelley to communicate with me, I'm being lifted up by him.
तो जैसे ही मैंने उन शब्दों को अपने अंदर आने की अनुमति दी, मैंने यह अनुभव किया कि मेरा मन जो है वह हल्का हो रहा है और उच्च हो रहा है.
He's been transformed by his poem.
वे स्वयं अपने कला से परिवर्तित थे.
That poem can transform me.
और वह कविता जो है वह मुझे बदलेगी.
In creating your art, you're transforming yourself.
In
creating your art, you're transforming yourself.
आपके अपने कलाओं को निर्माण करते हुए आप अपने आप को भी परिवर्तित करते हैं.
And anybody who encounters your work will be to some extent affected by it.
और जो भी उस कला को देखेगा या सुनेगा वह भी फिर आपके साथ साथ बदलेगा.
And you can have a big effect on the world in that way.
और इस तरीके से आप इस दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं.
Last night I quoted something from Shelley.
कल की रात को मैंने शेली से आपको उसके कविता से कुछ बताया था.
He described poets as the unacknowledged legislators of mankind.
और उन्होंने बताया है कि जो कवि जो है वह अपहचाने हुए लोक प्रतिनिधि है दुनिया में.
In other words, they're the people who really set the values.
इसका अर्थ दूसरे शब्दों में यही है कि वे लोग जो मूल्यों को रखते हैं.
Probably Shakespeare has had a far bigger effect on the world than the king at that time, James the First.
उस वक्त का जो राजा था जब शेक्सपियर ने अपने नाटक लिखने शुरू किए, उनका नाम था जेम्स फर्स्ट. जेम्स जो पहला जेम्स था, प्रथम जेम्स, उसके तुलना में शेक्सपियर का ज्यादा प्रभाव हुआ.
So Shakespeare is a much more effective lawmaker than James was.
तो राजा ने तब जो नियम बनाए उससे अधिक प्रभावी नियम शेक्सपियर ने बनाए.
Through art you communicate deeply with people.
क्योंकि कला के माध्यम से आप लोगों को गहरा संबंध आप प्रस्थापित करते हैं.
You change them at a level below their ordinary understanding.
हम उनका जो सामान्य दर्जा जो है सोचने का उससे परे जाकर हम उनको बदलते हैं.
So through art you can communicate deep human values.
तो कला के माध्यम से जो गहरे मानवीय मूल्य है उनको आप बता सकते हैं.
That can change all who come in contact with your art.
और आपके कला के साथ जो उसके संबंध में आते हैं उनको आप बदल सकते हैं.
But we have to transform the raw material of our own minds.
लेकिन हमें हमारा जो कच्चा कच्चे मन की जो सामग्री है उसे बदलना है.
Those ordinary minds are dominated by greed and hatred and ignorance.
यह जो सामान्य मन जो है यह लोभ मोह द्वेष के साथ प्रभावित होता है.
And deeply are based upon a fixed self-identity.
और गहराई से यह जो नित्य स्व है उसके आधार पर ही इसकी निर्मिति होती है.
On deep attachment to that fixed identity.
और उस गहरी नित्यता के साथ आसक्ति.
And Buddhist practice is lived to transform that raw material.
और बौद्ध आचरण जो है यह उस कच्चे सामग्री को परिवर्तित करना है.
And our artistic, creative life is lived to transform that basic material.
और हमारा जो सृजनात्मक जो जीवन हम जो जीते हैं, वह उस कच्चे सामग्री को परिवर्तित करने के लिए जीते हैं.
So I hope that's at least got our topic.
Go on.
Out.
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विषय हमने सोचा था, उसका एक मोटा मोटी जो कल्पना है आपको आई होगी.
And let's see whether that's struck any of you, and whether there's anything that you want to follow up from that.
और देखिए, आपको अगर कुछ सूझता है क्या उससे, आपको कुछ आपके मन में कुछ आ रहा हो.
So anything that anybody wants to ask or say, coming out of what I said.
तो जो मैंने कहा उससे आपको कुछ पूछना है या कुछ आपको कहना है. He's asking that I don't know about the West. But whatever I have experienced in India, only few percent, like 10% or even less than 10% artists have a good basis of karma, or they do good or skillful act and produce a good art. But most of the artists I have seen, they drink, they smoke, and then still they could able to produce a beautiful art. How could that be?
Well, it's a well-known phenomenon in the West as well.
यही पे एक यानी पाश्चिमात्य जगत में भी यही प्रक्रिया है, यही होता है.
Artists, the great artists, often are not very integrated as human beings.
बहुत सारे महान कलाकार जो होते हैं, वह अपने व्यक्तित्व में इकट्ठा यानी एक क्या कह सकते हैं, एक संपूर्ण नहीं, एक इंटीग्रेटेड का मतलब एकत्रित पुरुष जो होता है, वैसा नहीं होता है.
So they have access to experiences that go way beyond their ordinary personality.
तो आपकी जो सामान्य जो व्यक्तिमत्व होता है, उस सामान्य व्यक्तिमत्व से वो आगे जाते हैं या उससे कुछ हटके होते हैं.
And they're able to express that through their technical skills.
और उसके द्वारा वो अपनी जो तकनीकी है, जो है वो शैली जो है, उसको अभिव्यक्त करते हैं.
But this sort of unevenness seems to be a relatively recent phenomenon.
और यह जो विषमता है, यह evenness या
unevenness.
हाँ, जो विषमता है वो अभी हम कला जगत में पाते हैं.
And it's been argued that this is to do with the current state of our culture.
तो ऐसा कहते हैं कि अभी जो संस्कृति का जो स्तर है, उस संस्कृति के स्तर से उसका संबंध है.
It's from the 18th, 19th century in Britain, you got more and more of a materialist outlook developing.
तो 18वीं या 19वीं शताब्दी से जो भौतिक जो संस्कृति है, वो भौतिक संस्कृति ज्यादा हावी हो रही है.
And in India, that's been happening very fast in the last 50 or 60 70 years.
और पिछले 50-60 साल में भारत में सबसे ज्यादा हो रहा है.
And I think the idea of art in common circles in India is much influenced by the West.
और यहाँ पे जो कला की जो कल्पना है, वह पाश्चात्य जगत से ज्यादा प्रभावित है.
And the whole of India, the whole of the West is increasingly under materialist domination.
और पूरा जो पाश्चात्य जगत है, वह भौतिक संस्कृति का गुलाम है.
And I think that creates a sort of split in the mind of the artist.
और वो क्या है, मन को, यानी कलाकार के मन को वो विभाजित कर रहा है.
Your experience, you have access to experience that is quite different.
और आपका जो अनुभव है, वो अनुभव अलग स्तर पे होता है.
But your ordinary life is just an ordinary life.
लेकिन आपका जो सामान्य जीवन, बस सामान्य जीवन होता है.
And part of what I believe we need to do is bring art and a Dhamma closer together.
तो हमें यही करना है कि कला और धम्म को फिर इकट्ठा लाना है.
So that the artist doesn't have to feel that sort of split.
तो जो कलाकार होगा, वह वैसी जो दुफड़ी जो है, जो द्विधा, जो विभाजित जो मन है, उसको अनुभव नहीं करेगा.
We need to create a new culture.
हमें एक नई संस्कृति का निर्माण करना है.
In which art is integrated into general culture.
जहाँ पे वो सामान्य संस्कृति में कलाकार अपने आप को समाविष्ट कर सके.
So in short, I think the phenomenon you're referring to, which is very familiar in the West, is the result of the split in our culture.
तो यह जो प्रक्रिया जो आप बता रहे हैं वह संस्कृति की विभाजितता है.
There are features of it in India that I don't understand because I'm not Indian.
यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ लक्षण है संस्कृति के जो मैं समझ नहीं पाता हूँ भारत.
The religious heritage, the social and caste heritage, I don't understand.
तो जो जाति है जो धर्म है ये सब मुझे समझ में नहीं आता है.
I'm not even sure I want to understand.
और मैं इसे समझना भी नहीं चाहता.
But it creates a sort of split in the cultural experience.
और यह हमारे सांस्कृतिक अनुभव में एक स्प्लिट या दुफड़ी निर्माण करता है.
And that puts artists under great strain.
और उससे कलाकार एक तनाव में रहता है.
And of course there's also art can be very much associated with material success.
और कला जो है वह आपके भौतिक यशस्विता या जो जीत है उसके साथ आप उसका संबंध लगाते हैं.
And that can be a great temptation to the artist.
और यह कलाकार के लिए बहुत बड़ी उत्तेजनाएं हो सकती है.
But we need to create a new kind of culture.
लेकिन हमें एक नए तरीके की संस्कृति का निर्माण करना है.
In which the artist has an integrated place.
और जहां पे कलाकार एक अपने आप को एकत्रित पाए.
And that's part of the reason why we're holding these Buddha festivals.
और यही एक कारण भी है कि हम क्यों इस बौद्ध महोत्सव का आयोजन करते हैं.
That's why we're holding this arts retreat.
और यही कारण है कि इस कला के शिबिर का इस तरीके से आयोजन किया जाए.
It's a contribution to creating a society, a culture, within which art has an integrated place.
ऐसे संस्कृति का या समाज का निर्माण करना जहाँ उन कलाओं को एकत्रित या समाविष्ट किया जाए.
And where the artist does not have to be a divided person.
जहाँ पे कलाकार जो है वह डिवाइडेड या विभाजित व्यक्ति नहीं होगा.
It's a very important and interesting question.
ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है.
And there's much more to say, but that's perhaps enough for now.
तो इतना पर्याप्त है अभी के लिए. बहुत कुछ कह सकते हैं.
It seems to me the key issue is the creation of a new kind of culture.
महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि नए संस्कृति का निर्माण करना है.
So I see what we're doing here is a very important new step from what Baba Saheb did there in 1956.
तो 1956 में जो बाबा साहब ने किया उसके उपरांत यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हम उठाना चाह रहे हैं.
Trying to create a kind of culture within which art is integrated with life.
एक ऐसे संस्कृति का निर्माण करना जहाँ पे कला जीवन का हिस्सा बने.
And we're up against very big forces that are against us.
और हम उस संस्कृति के विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं जो संस्कृति ने हमेशा ही संकुचित रखा है हमको.
There are forces of counter-revolution in India itself.
अब आपको पता है कि एक प्रतिक्रांति का एक शक्ति है इस देश में.
You're well familiar with those.
अब आप सब लोग इसको भली भांति जानते हैं.
But you've increasingly got the forces of materialism coming from the West.
और जो भौतिकवाद है जो पाश्चात्य जगत से आ रहा है उसको भी आप भली भांति जानते हैं.
In which life is reduced simply to material pleasure.
जहाँ पे जीवन केवल भौतिक सुखों तक ही संकुचित किया गया है.
And we have to try to find a new cultural direction.
और हमें एक नए संस्कृति की जो दिशा है उसको देखना जरूरी है.
And I believe that the Buddha Dhamma provides the best basis for that.
और हम यह सोचते हैं कि बौद्ध धर्म उसके सबसे अच्छी बुनियाद देता है.